लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि दुख कष्टों और कठिनाइयों में पड़े सभी पीड़ितों को सहायता और एकात्मता प्राप्त हो। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण विषय हैं सामायिक लोकोपकारी चर्चा, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी के कारण अब तक 203 देशों में 10,16,000 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है। 2,11,000 लोग ठीक हुए हैं और 53,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। यूएन प्रमुख अंतोनियो गुटेरेस ने कोरोना वायरस के खिलाफ एकजुट जंग छेड़ने और एक दूसरे का ख्याल रखने की पुकार लगाई है। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों की सलाह पर अमल करते हुए स्वास्थ्य आपदा का मुकाबला करने में एक दूसरे का ख्याल रखने की जरूरत पर जोर दिया। दुनिया के निर्धन देशों के लिए कोविड-19 के खिलाफ $2 अरब की वैश्विक मानवीय राहत योजना, ताकि अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता की भावना को ठोस कार्यवाही का आकार दिया जा सके। आइए सुनते हैं इसी पर विस्तार से।
संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारियों ने कोविड-19 की अभूतपूर्व चुनौती से निपटने के लिए एक व्यापक मानवीय राहत अपील जारी की है। इस मुहिम के जरिए कमजोर स्वास्थ्य सेवाओं वाले देशों की सहायता सुनिश्चित करने और लाखों लोगों की जिंदगियों को बचाने का लक्ष्य रखा गया है। विश्वव्यापी महामारी से एहतियाती उपायों के मद्देनजर कई देशों में तालाबंदी लागू है, जिससे करीब 3 अरब लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। यूएन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ऑनलाइन प्रेस वार्ता में महासचिव गुटेरेस ने कहा,
टुडे वी आर लॉन्चिंग अ $2 billion ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस प्लान टू फंड द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 इन द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज। Coordinated by the UN's Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, this interagency plan brings together existing appeals from the World Health Organization.
दुनिया के निर्धनतम देशों में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए आज हम $2 अरब की वैश्विक मानवीय राहत योजना को पेश कर रहे हैं। इस अंतर एजेंसी योजना की तैयारी मानवीय राहत मामलों में समन्वय के लिए UN कार्यालय की ओर से की गई है, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन और UN के अन्य साझेदार संगठनों की अपीलों को शामिल करने के अलावा नई जरूरतों की भी शिनाख्त की गई है। महासचिव ने कहा कि इस योजना के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होती है तो उससे कई जिंदगियों को बचाने में सफलता मिलेगी। साथ ही टेस्ट किटों की व्यवस्था करने, बीमारों की देखभाल करने और स्वास्थ्य कर्मियों की रक्षा करने के लिए निजी बचाव सामग्री को जुटाना भी संभव होगा। कोरोना वायरस अब दुनिया के उन इलाकों में भी दस्तक दे रहा है जो हिंसक संघर्ष, प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे हैं।
भारत दुनिया का दूसरा सबसे घनी आबादी वाला देश कोरोना वायरस के प्रसार और रोकथाम के लिए 25 मार्च से ही 21 दिन की तालाबंदी पर है। भारत में अब तक 2,301 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, 157 लोग ठीक हुए हैं और 56 लोगों की मौत हुई है। भारत में संयुक्त राष्ट्र की रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर रेनाटा ने पूरे देश में तालाबंदी रणनीति का स्वागत करते हुए भरोसा दिलाया कि इससे कोविड-19 महामारी की रोकथाम में मदद मिलेगी। आइए सुनते हैं दिल्ली से संयुक्त राष्ट्र हिंदी न्यूज की अंशु शर्मा का रिपोर्ट।
देश में तालाबंदी के प्रधानमंत्री के कदम का स्वागत करते हुए भारत में संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर रेनाटा डिजालियन ने कहा कि भारत में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली पूरी तरह काम में लगी है और कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में भारत सरकार को अधिक से अधिक समर्थन देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर हम एक साथ काम करते हैं तो हम अपने जीवनकाल के इस सबसे बड़े स्वास्थ्य खतरे को दूर कर सकते हैं। उधर भारत में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने कहा कि दुनिया की दूसरी सबसे घनी आबादी वाले देश भारत में जिस तरह कोविड-19 की रोकथाम के लिए लोग स्वेच्छा से तालाबंदी का पालन कर रहे हैं वो सराहनीय है, लेकिन इसके सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी दूरगामी प्रभाव होंगे। भारत में यूएनएफपीए की रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव अर्जेंटीना माताबेल पिक्किन ने बताया,
वी नो दैट इंडिया इज अ प्रोड्यूसर ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, थैंक गॉड फॉर दैट।
भारत चिकित्सा उपकरणों का एक बड़ा उत्पादक है। मैं कहती हूँ भगवान का शुक्र है, क्योंकि इस वक्त जब आप और हम बात कर रहे हैं, भारत परीक्षण किट के उत्पादन में व्यस्त है, लेकिन 1 अरब 30 करोड़ की आबादी के लिए इतनी बड़ी मात्रा में उत्पादन करना संभव नहीं होगा।
भारत में यूएनएफपीए की रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव अर्जेंटीना माताबेल पिक्किन के शब्द। भारत में चिंता गहरा रही है कि अगर देश में व्यापक स्तर पर संक्रमण फैलता है तो इसके विनाशकारी नतीजे होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के भारत में प्रतिनिधि डॉक्टर हैंक बैकेडम का मानना है कि भारत ने कोविड 19 के खिलाफ व्यापक, मजबूत और समय रहते कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि खुद प्रधानमंत्री की अगुवाई में सरकार का पूरा रुख उच्च स्तर पर राजनीतिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इन कदमों से संक्रमण के चक्र को तोड़ने में मदद मिलने की उम्मीद जताई गई है। उन्होंने कहा विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र के साझेदारों के साथ मिलकर कोविड 19 के लिए तैयारियों और रोकथाम के उपायों पर सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है।
भारत के राष्ट्रपति ने 27 मार्च को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों और उपराज्यपालों को रेड क्रॉस और अन्य धार्मिक संगठनों एवं स्वयंसेवकों से सहयोग लेने को कहा, ताकि कोरोना वायरस का प्रसार जल्द से जल्द रोका जा सके। भारत में कोविड 19 की रोकथाम हेतु जमीनी स्तर पर ज्यादा जानकारी के लिए अंशु शर्मा ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष में मध्य प्रदेश के लिए स्टेट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नीलेश देशपांडे से बातें की।
कोविड 19 की रोकथाम के लिए भारत में पूर्ण तालाबंदी घोषित कर दी गई है। इस वक्त देखें तो समय की मांग यही थी, लेकिन क्या लगता है दुनिया की सबसे बड़ी घनी आबादी वाले देश भारत के लिए इसके क्या मायने हैं आपके हिसाब से?
लॉकडाउन एक महत्वपूर्ण उपाय है जो हमने लिया है, पर ये अपने आप में सिर्फ काफी नहीं है और ये पूरी तरह से बीमारी को रोक भी नहीं सकता या मिटा भी नहीं सकता। इसके साथ साथ हम सबको, भारत सरकार को, जो हम कदम ले रहे हैं, जैसे कि अभी टेस्टिंग की फैसिलिटी को बढ़ाना है या हर जो व्यक्ति है जिसमें कोई लक्षण नजर आ रहे हैं उस हर व्यक्ति की हमको टेस्ट करने की अपनी तैयारी करनी है, उसको आइसोलेट करने की कोशिश करना है।
लेकिन भारत की जैसे ज्यादातर आबादी गांव में रहती है, तो इस स्थिति में उनकी जिंदगी और उनके जीवन यापन पर क्या असर पड़ रहा है?
लगभग 70% हमारी आबादी गांव में रहती है, यानी अगर आप देखेंगे गांव से हमारा माइग्रेशन भी बहुत ज्यादा होता है। काफी लोग शहर की तरफ जाते हैं, शहर से या फिर किसी अन्य राज्य में काम की तलाश में जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये जो लोग बाहर गए थे वो शहर से या दूसरे राज्यों से वापस आ रहे हैं, तो गांव वालों के लिए या ग्रामीण क्षेत्र के लिए अब एक खतरा बन हुआ है कि कहीं जो बीमारी अब तक ग्रामीण क्षेत्र में तक नहीं पहुंची थी, हो सकता है वो अब वहां तक पहुंचे। और दूसरी चुनौती होगी कि ग्रामीण क्षेत्र की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं हम उनको कैसे तैयार करें ताकि वो इन ग्रामीण क्षेत्रों में जो रह रहे हैं उनको सही सेवाएं दे सके, वहाँ उनकी टेस्टिंग कर सके या वहाँ पे ही उन ट्रीटमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल हो। हमारे फ्रंटलाइन फंक्शनरीज है, आशाज है, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, तो उनके माध्यम से हम कैसे लोगों तक सही जानकारी पहुँचाए।
तो आप मध्य प्रदेश में हैं, वहाँ पर ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, तो हमें वहाँ पर किस तरह काम चल रहा है, किस तरह जागरूकता फैलाने में यूएनएफपीए काम कर रहा है?
हम जो दूर दराज के क्षेत्र है जहाँ आज की तारीख में जब लॉकडाउन हो रखा है तो आपको इन पर्सन ट्रेनिंग या जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, तो हम वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से गांव के हर वो कार्यकर्ता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कोरोना कोविड 19 क्या है, कैसे इसकी रोकथाम करनी चाहिए, क्या स्टेप्स उनको लेने चाहिए, अगर कोई उनके यहाँ से बाहर से आया है तो कैसे उसके बारे में जानकारी आगे पहुंचानी है। साथ ही साथ काफी सारा आईसी मटेरियल या सिंपल वीडियोज बनाए जा रहे हैं, ऑडियो क्लिप्स बनाई जा रही है जो सरकार के एंडोर्समेंट या अप्रूवल के बाद अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए कोशिश की जा रही है कि हर गांव तक हम पहुंचे, सही जानकारी के साथ पहुंचे।
आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र संघ रेडियो द्वारा तैयार किए गए थे, जिन्हें प्रस्तुत कर रहे थे सचिन गौर। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
सागर पिता भर दे मुझ में प्यार तेरा,
रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। वेटिकन स्थित संत मर्था प्रेरितिक आवास के प्रार्थनालय में शुक्रवार को ख्रीस्त्याग अर्पण के अवसर पर संत पापा ने उन लोगों को याद किया जो कोरोना वायरस से उत्पन्न निर्धनता और भुखमरी के शिकार बन रहे हैं। उन्होंने उन लोगों को भी प्रभु ईश्वर की करुणा के सुपुर्द किया जो इस महामारी से ग्रस्त लोगों की सेवा में जुटे हैं। चालीसा काल के पांचवें सप्ताह की प्रार्थना करते हुए संत पापा ने स्तोत्र ग्रंथ के 30वें भजन के इन शब्दों का उच्चार कर ख्रीस्त्याग आरंभ किया। मुझ पर दया कर प्रभु, क्योंकि मैं संकट में हूं। मेरे शत्रुओं के हाथों से मुझे छुड़ा और मेरे आतताइयों से मेरा उद्धार कर। प्रभु मुझे भ्रमित मत होने दे। कोरोना वायरस महामारी के बाद की स्थिति पर चिंतन करते हुए संत पापा फ्रांसिस ने कहा, लोगों ने महामारी के बाद की स्थिति के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। आने वाली सभी समस्याओं पर वे चिंतित हैं, निर्धनता, बेरोजगारी और भुखमरी की समस्याएं। हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज बीमारों की सेवा में लगे हैं, किंतु कल के बारे में सोचना भी अनिवार्य है। सबकी मदद के बारे में सोचना अनिवार्य है। दुखों की माता मरियम से याचना करते हुए संत पापा ने कहा, खजूर रविवार से पूर्व पड़ने वाले इस शुक्रवार को हम माता मरियम के दुखों की याद करें तथा उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करें, क्योंकि उन्होंने हमारी माता बनना स्वीकार किया। मरियम के दुखों पर चिंतन करते हुए संत पापा ने कहा कि कलीसिया मरियम के साथ दुखों पर मनन करती है। सर्वप्रथम येसु के जन्म से 40 दिन बाद ही सिमियोन की भविष्यवाणी उस तलवार की बात करती है जो हृदय को बेधेगी। दूसरा दुख, बालक येसु को बचाने के लिए मिस्र में भागना। तीसरा दुख, जब मरियम और योसेफ 3 दिन तक अपने 12 वर्षीय पुत्र की खोज में भटकते रहे थे। चौथा दुख, कलवारी के रास्ते में येसु से मुलाकात। पांचवा दुख, येसु को क्रूस पर मरते देखना। छठवा दुख, येसु का क्रूस पर से उतारा जाना तथा मरियम की गोद में रखा जाना। और सातवां दुख, येसु का कब्र में दफनाया जाना। संत पापा ने कहा कि कलीसिया की माता के इन दुखों की याद करना हम सबके लिए हितकर है, क्योंकि इससे हमें अपने दुख सहने का संबल प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि क्रूस पर टंगे येसु ने हम से कहा था कि मरियम ही हमारी माता है। इस दुखद घड़ी में इसीलिए हम सब मिलकर येसु की माता, हम सब की माता, कलीसिया की माता मरियम को पुकारें और उनसे प्रार्थना करें। संत पापा फ्रांसिस ने गुरुवार को अप्रैल माह के प्रार्थना मनोरथ पर चिंतन करते हुए एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने आसक्तियों से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना की ताकि इस कठिन समय में इन लोगों को उपयुक्त मदद मिल सके। इस माह की प्रार्थना मनोरथ में संत पापा फ्रांसिस ने उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना का आग्रह किया है जो किसी न किसी प्रकार की आसक्ति से पीड़ित हैं, विशेष रूप से मादक पदार्थों, जुआ, अश्लील साहित्य और इंटरनेट के दुरुपयोग से। वीडियो संदेश में संत पापा ने कहा, निश्चित रूप से आपने आसक्ति अथवा नशे के बारे में सुना होगा। क्या आपने कभी जुआ खेलने की लत के बारे में, पोर्नोग्राफी से लेकर इंटरनेट तक और वर्चुअल स्पेस के खतरों के बारे में सोचा है? उन्होंने कहा, दया के सुसमाचार से समर्थित होकर हम व्यसन से जुड़ी पीड़ाओं से ग्रस्त लोगों के दुखों को कम कर सकते हैं, आसक्त लोगों की देखभाल कर सकते हैं और उनके उपचार में योगदान दे सकते हैं। हम प्रार्थना करें कि आसक्तियों से पीड़ित लोगों की सहायता की जाए तथा उन्हें उपयुक्त उपचार मिल सके। संपूर्ण विश्व में 2 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के उपलक्ष्य में संत पापा फ्रांसिस ने ऑटिज्म के शिकार बने विश्व के समस्त बच्चों तथा भिन्न प्रकार से सक्षम लोगों के लिए प्रार्थना की। एक ट्वीट संदेश में गुरुवार को संत पापा फ्रांसिस ने सभी को ऑटिस्टिक बच्चों और उनके परिजनों के लिए प्रार्थना हेतु आमंत्रित करते हुए कहा, हम सब मिलकर ऑटिस्टिक बच्चों तथा विकलांग व्यक्तियों की मदद करने वाले उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें जो इस संकटपूर्ण समय में अतिरिक्त कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। केरल में कान्नूर धर्म प्रांत के एक कैथलिक पुरोहित ने कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की सेवा और लॉकडाउन के समय निर्धन मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए अपनी एम्बुलेंस स्थानीय अधिकारियों के सुपुर्द कर दी है। फादर जामोन चंपका सेरिल ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने यह पहल इसलिए शुरू की है क्योंकि वे इस बात के प्रति सचेत हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण के डर से लोग मरीजों को अस्पताल नहीं ले जा रहे हैं। मैटर्स ऑफ इंडिया नामक कैथलिक पत्रिका से बातचीत में उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस बीमारी से सबसे अधिक प्रभावित निर्धन लोग हैं जिनके पास अस्पताल तक पहुंचने का कोई साधन नहीं है। उन्होंने कहा कि विश्व के कई क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि इस महामारी का सर्वाधिक दुष्परिणाम गरीबों पर पड़ रहा है, इसलिए कि उन्हें किसी प्रकार की स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि अधिकांश निर्धनों के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है, इसकी वजह से कई जगहों पर उनकी अवहेलना की जा रही है। फादर जामोन चंपका सेरिल कानूर धर्म प्रांत में ग्रामीणों की देखभाल के लिए गठित आयोग के निर्देशक हैं तथा साथ ही एक स्थानीय कैथलिक कल्याणकारी संगठन चेम्पेरी मेडिकल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदेशित लॉकडाउन की घोषणा के बाद 26 मार्च से कानूर धर्म प्रांत की नई सेवा शुरू हो गई है। फादर जामोन चंपका सेरिल की पहल इन दिनों स्थानीय मीडिया में सुर्खियां बटोरती रही है, जिसे कानूर के धर्माध्यक्ष एलेक्स वडकमथला का भी समर्थन मिला है तथा जिन्होंने इसका स्वागत किया है। उन्होंने कहा, इस समय यह एक अच्छी और उपयुक्त पहल है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण किसी को भी पीड़ित नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।